एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों पर गहरा असर डाला है।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी किताब जो कह सकते हैं कि पूर्वी अध्यात्म को पश्चिम के दरवाजे तक ले आई।
हम बात कर रहे हैं परमहंस योगानंद की कालजयी रचना योगी की आत्मकथा की,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी।
और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक जीवन कहानी नहीं है, मतलब ये अपने आप में आत्मज्ञान, क्रिया योग और हमारी चेतना की जो अनंत संभावनाएं है ना, उसका एक परिचय है।
और मुझे लगता है कि आज के जमाने में जहाँ लोग इतना तनाव, इतनी दिशाहीनता महसूस करते हैं, जानकारी का बोझ,
हाँ हाँ
तब ये किताब शायद और भी जरूरी हो जाती है। ये एक अलग रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, ये बताती है कि भाई आंतरिक शांति, जीवन का उद्देश्य, ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये एक तरह का विज्ञान है जिसे अनुभव किया जा सकता है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस गहरी और प्रेरणा देने वाली किताब के जो मुख्य विचार हैं, कहानियां हैं, उन्हें एक सहज बातचीत में समझें।
चलिए शुरू करते हैं सफर। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करें। परमहंस योगानंद,
हाँ,
इनका बचपन का नाम था मुकुंद लाल घोष। 1893 में जन्मे थे भारत में। और वो सिर्फ लेखक नहीं थे, वो एक योगी थे, गुरु थे, संत थे।
सही।
और उन्होंने पश्चिम में, खासकर अमेरिका में, लाखों लोगों को ध्यान और क्रिया योग की जो हमारी प्राचीन विधियां हैं वो सिखाई।
और उनकी जो विश्वसनीयता है वो किसी यूनिवर्सिटी डिग्री से नहीं आती है ना,
नहीं,
वो आती है उनके अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव से और एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सम्मानित गुरु शिष्य परंपरा से।
बिल्कुल, वो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे,
हाँ
जो खुद लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे।
अच्छा
और ये परंपरा और पीछे जाती है महावतार बाबा जी तक,
अच्छा
जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही इस युग में क्रिया योग को फिर से दुनिया के सामने रखा।
राइट,
तो योगानंद जी का जो अधिकार है वो उनके प्रत्यक्ष अनुभव से आता है।
सही कहा। उनका पूरा जीवन ही एक तरह से उन सिद्धांतों का सबूत है जिनकी वो बात करते हैं।
हाँ, वो पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल जैसे थे। उन्हें भारतीय अध्यात्म की गहरी समझ तो थी ही, साथ ही वो पश्चिमी मन को भी समझते थे, उनकी तर्क वाली सोच को। इसीलिए उनकी बातें वहां इतनी असरदार हुईं।
और इसी समझ के साथ वो 1920 में अमेरिका गए और वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप यानी SRF की स्थापना की।
जी,
ये संस्था आज भी है और उनके काम को आगे बढ़ा रही है, क्रिया योग और ध्यान सिखा रही है।
तो ये किताब एक तरह से उनके मिशन का बहुत जरूरी हिस्सा थी, अपनी कहानी के जरिए योग का विज्ञान दुनिया को समझाना।
तो चलिए अब किताब पर आते हैं। ये आखिर है किस बारे में, अगर बिल्कुल संक्षेप का कहें तो ये एक आत्मकथा भी है, योग दर्शन का परिचय भी है, और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके लिए एक गाइड भी है। सब कुछ एक में।
हाँ, और इसका जो मूल विचार है, जो कोर आइडिया, वो ये है कि इंसान के जीवन का असली मकसद है आत्म साक्षात्कार।
आत्म साक्षात्कार मतलब?
मतलब अपनी आत्मा का उस परम चेतना से, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उससे सीधा सचेत अनुभव करना, मिलन।
अच्छा,
और योगानंद जी इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है या मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं।
ओके,
ये इसी जीवन में वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की जाने वाली एक वास्तविक अवस्था है।
और इस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता, उसके लिए किताब में क्रिया योग की बात है ना?
बिल्कुल, क्रिया योग पर बहुत जोर है। इसे आध्यात्मिक विकास को तेज करने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया गया है।
तो ये किताब उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ होने का क्या मतलब है?
हाँ, और ये दिखाती है कि आध्यात्मिक सच सिर्फ पढ़ने सुनने की बातें नहीं है, उन्हें खुद अभ्यास करके अनुभव किया जा सकता है।
कहानी हमें ले जाती है 20वीं सदी की शुरुआत के भारत में, फिर अमेरिका तक की यात्रा। हम योगानंद के बचपन को देखते हैं, ईश्वर के लिए उनकी तड़प।
हाँ, और वो चमत्कारी साधु संतों से मिलते हैं, जैसे वो हवा में तैरने वाले संत का जिक्र है,
हाँ,
या वो योगिनी जो बिना खाए पिए जीती थी। ये सब चीजें शुरू से ही एक अलग दुनिया की झलक देती हैं।
और फिर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से मिलना।
जी, और फिर उनके आश्रम में जो कठिन ट्रेनिंग होती है वो सब बहुत दिलचस्प है।
फिर कहानी उनके अमेरिका जाने, वहां योग सिखाने की चुनौतियों और सफलताओं तक पहुंचती है।
हाँ, और रास्ते में कर्म, पुनर्जन्म, चमत्कार कैसे होते हैं, सभी धर्मों का मूल कैसे एक है, इन सब विषयों पर भी बात होती है। ये किताब वाकई भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवार को थोड़ा हिला देती है।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, युवा मुकुंद की कहानी से।
जी,
बचपन से ही उनमें दुनिया की चीजों से ज्यादा ईश्वर की तरफ खिंचाव था, एक बेचैनी थी कुछ खोजने की।
और इसी खोज में वो कई साधुओं से मिलते हैं। वो स्वामी प्रणवानंद का जिक्र बड़ा रोचक है, जिन्हें दो शरीरों वाले संत कहा गया।
हाँ, क्योंकि वो कथित तौर पे एक ही समय में दो जगह मौजूद हो सकते थे।
ये शुरुआती अनुभव उस अनदेखी आध्यात्मिक दुनिया की तरफ इशारा करते हैं।
लेकिन उनकी असली तलाश तो एक सच्चे गुरु की थी।
बिल्कुल, और वो तलाश पूरी होती है बनारस में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलकर। योगानंद इसे सिर्फ संयोग नहीं मानते, वो कहते हैं ये जन्मों का पुनर्मिलन था।
ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था।
श्री युक्तेश्वर के आश्रम में उनका प्रशिक्षण। श्री युक्तेश्वर बहुत ज्ञानी थे, सख्त भी थे, लेकिन उनका अनुशासन प्रेम से भरा था।
अच्छा।
उनका मकसद था मुकुंद के अहंकार और भ्रमों को तोड़ना। और शिक्षा सिर्फ बातों से नहीं मिलती थी, अनुभवों से।
जैसे?
जैसे गुरु का उन्हें बिना डरे हैजा महामारी के बीच सेवा करने भेजना, या दूर से ही मानसिक रूप से बुला लेना। यहीं पर योगानंद ज्योतिष, युगों के बारे में यानी कॉस्मिक साइकिल्स और रियलिटी की सूक्ष्म प्रकृति के बारे में सीखते हैं।
ये गुरु शिष्य संबंध का महत्व दिखाता है ना, कैसे एक सच्चा गुरु शिष्य को बदल सकता है।
बिल्कुल।
इसके बाद आता है उनका सन्यासी बनना, लेकिन उससे पहले गुरु के कहने पर वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं।
हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि आध्यात्म और सांसारिक जीवन में संतुलन हो सकता है।
फिर उन्हें दीक्षा मिलती है प्राचीन स्वामी संप्रदाय में, और नाम मिलता है योगानंद।
इसका मतलब है योग, यानी ईश्वर से मिलन, उसके जरिए मिलने वाला आनंद।
और इसी दौरान वो रांची में वो अनोखा स्कूल खोलते हैं, हाउ टू लिव स्कूल, जहाँ पढ़ाई के साथ योग और ध्यान पर जोर था।
और वहीं उन्हें महाअवतार बाबा जी से पश्चिम जाने का निर्देश मिलता है। ये उनके जीवन का अगला बड़ा चैप्टर था।
1920 में अमेरिका पहुंचना, वहां योग और वेदांत का संदेश फैलाना, ये आसान तो नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं। एक भौतिकवादी समाज में प्राचीन आध्यात्मिक सत्यों को समझाना बहुत बड़ी चुनौती थी। वहीं उन्होंने SRF की नींव रखी।
अमेरिका में उनकी खास मुलाकात लूथर बोबाइंग से होती है, मशहूर वनस्पति विज्ञानी।
हाँ, जिन्हें योगानंद अमेरिकी संत कहते हैं। बोबाइंग पौधों से बात करके नई किस्में बनाते थे।
कमाल है।
योगानंद के लिए ये विज्ञान और अध्यात्म के मिलने का एक उदाहरण था कि कैसे एकाग्रता और प्रकृति से गहरा कनेक्शन चमत्कारी नतीजे दे सकता है।
फिर 1935 में वो भारत लौटते हैं। ये यात्रा भी कम साधारण नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से उनके महासमाधि लेने से ठीक पहले मिलते हैं। वो बहुत मार्मिक क्षण था।
और महात्मा गांधी से भी मिलते हैं वो।
हाँ, गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है, अहिंसा के आध्यात्मिक आधार पर चर्चा होती है, और योगानंद उन्हें क्रिया योग की दीक्षा भी देते हैं।
ये तो बड़ी बात है।
और वो गिरी बाला नाम की योगिनी से मिलते हैं, जो 50 साल से भी ज्यादा से बिना कुछ खाए पिए सिर्फ प्राण शक्ति पर जी रही थी।
अविश्वसनीय।
ये उन योगिक सिद्धांतों का जीता जागता सबूत था जिनकी योगानंद बात करते थे। फिर यूरोप में वो थेरेस न्यूमन से मिलते हैं।
वो कैथोलिक संत जिनके शरीर पर स्टिग्मेटा यानी ईसा मसीह के घावों के निशान उभर आते थे।
जी, इन सब मुलाकातों से योगानंद का ये विश्वास और पक्का होता गया कि सभी सच्चे धर्मों का मूल एक ही है, आध्यात्मिक नियम हर जगह काम करते हैं।
और शायद सबसे हैरान करने वाला पल जो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर अपनी मृत्यु के बाद उनके सामने सशरीर प्रकट होते हैं।
हाँ, वो अध्याय तो अपने आप में अद्भुत है। श्री युक्तेश्वर उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन, सूक्ष्म लोकों, आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये परलोक विद्या पर एक गहरा पाठ जैसा है।
पूरे किताब में योग की विज्ञान की बात है, खासकर क्रिया योग की।
हाँ, उसे सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तकनीक के तरह समझाया गया है।
कैसे काम करती है ये तकनीक, कुछ बता सकते हैं?
योगानंद समझाते हैं कि ये एक उन्नत प्राणायाम विधि है जो रीढ़ की हड्डी में प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे मन और इंद्रियां शांत होती हैं और आत्मा अपनी असली प्रकृति का अनुभव कर पाती है।
इसके साथ ही कर्म और पुनर्जन्म की भी बात है।
बिल्कुल। कर्म का नियम यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसे एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, ब्रह्मांडीय कानून की तरह बताया गया है।
और पुनर्जन्म?
पुनर्जन्म को आत्मा के विकास और सीखने की एक लंबी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जब तक सारे कर्मों का हिसाब चुकता ना हो जाए और मोक्ष न मिल जाए। ये सब मिलकर योग के एक पूरे विज्ञान का खाका खींचते हैं।
इस किताब से कई गहरे संदेश निकलते हैं। एक तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जोर गुरु शिष्य संबंध पर है।
हाँ बिल्कुल, योगानंद इसे आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी मानते हैं, एक पवित्र रिश्ता।
सच्चा गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो शिष्य के अहंकार को तोड़ता है, उसे सही रास्ता दिखाता है।
ये श्री युक्तेश्वर और योगानंद के रिश्ते में साफ दिखता है
जी।
और दूसरा बड़ा विषय है क्रिया योग। इसे सिर्फ एक ध्यान विधि नहीं कहा गया,
बल्कि ईश्वर तक पहुँचने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया गया।
हाँ, विमान मार्ग कहा है उन्होंने। तर्क यह है कि श्वास और प्राण पर नियंत्रण करके मन शांत होता है, और शांत मन ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। इसे आध्यात्मिक विकास को तेज करने वाला तरीका माना गया है।
एक और अहम बात जो बार बार आती है वो है सभी सच्चे धर्मों की मौलिक एकता।
बिल्कुल, योगानंद जी का मानना था कि चाहे वो कृष्ण हो, ईसा मसीह हो या कोई और पैगंबर, उनकी मूल शिक्षाएं एक ही हैं, इंसान को उसकी दिव्यता का एहसास कराना।
वो अलग अलग धर्मों के संतों से मिलकर इसी बात को पुख्ता करते हैं।
हाँ, और एक और बहुत दिलचस्प चीज है चमत्कारों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।
योगानंद कहते हैं कि जिन्हें हम चमत्कार समझते हैं वो असल में प्रकृति के अनदेखे सूक्ष्म नियमों का नतीजा है।
अच्छा।
सिद्ध योगी इन नियमों को समझते हैं और अपने मन की शक्ति से ऊर्जा और पदार्थ को प्रभावित कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि चेतना के विज्ञान का हिस्सा है।
इस किताब में कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो याद रह जाती हैं। जैसे वो कहते हैं, आत्मा ध्यान करना पसंद करती है क्योंकि परमात्मा के संपर्क में ही उसका सबसे बड़ा आनंद निहित है।
कितनी सुंदर और सच्ची बात है। मतलब ध्यान कोई बोझ नहीं, वो हमारी आत्मा की पुकार है। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है, अपने स्रोत से जुड़ने में।
एक और शक्तिशाली विचार है, मानव मन सर्वशक्तिमान ईश्वर की चेतना की एक चिंगारी है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस चीज पर भी तीव्रता से विश्वास करेगा वो तुरंत घटित हो जाएगी।
ये हमारे विचारों की, हमारे विश्वास की ताकत दिखाता है कि हम अपनी रियलिटी को बनाने में कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं।
हाँ, ये चमत्कारों के नियम का आधार भी है और हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है।
और मन के बारे में ये कहना कितना सही है, तुम एक पागल हाथी को नियंत्रित कर सकते हो, तुम भालू और बाघ का मुंह बंद कर सकते हो, लेकिन मन पर नियंत्रण बेहतर और अधिक कठिन है।
बिल्कुल, आध्यात्मिक रास्ते की असली चुनौती यही है। बाहरी दुनिया को जीतना शायद फिर भी आसान हो,
अपने ही चंचल मन को साधना सबसे मुश्किल काम है, और योग का पूरा अभ्यास इसी आंतरिक जीत के लिए है।
तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। सबसे सीधा कदम तो शायद ध्यान का अभ्यास शुरू करना हो सकता है।
जरूरी नहीं कि क्रिया योग ही हो, कोई भी सरल विधि।
हाँ, कोई भी, रोज बस कुछ मिनट की शांति भी मन को स्थिर करने, तनाव कम करने और अंदरूनी खुशी महसूस करने में मदद कर सकती है।
दूसरा, कर्म के नियम को समझना, ये कैसे मदद कर सकता है?
अगर हम ये माने कि हमारे आज के हालात हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, तो इसका मतलब है कि हम आज अच्छे विचार और काम करके अपना आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं।
ये हमें लाचार महसूस करने की बजाय अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है।
बिल्कुल, और योगियों की तरह भावनात्मक स्थिरता विकसित करना,
ये समझना कि हमारी असली पहचान ये शरीर या मन नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है,
ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव, आलोचना, हार, यहाँ तक कि मौत के डर से भी निपटने में मदद कर सकता है। एक गहरी शांति मिलती है।
और एकाग्रता और इच्छा शक्ति बढ़ाना, ये तो हर चीज में काम आता है।
हाँ, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई और लक्ष्य, मन को एक जगह टिकाना सीखना ध्यान इसका एक तरीका है। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी मल्टीटास्किंग कम करके एक समय में एक काम पर फोकस करके इसे बेहतर किया जा सकता है।
मेरे लिए इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि अध्यात्म कोई दूर की रहस्यमयी चीज नहीं है, ये एक व्यक्तिगत विज्ञान हो सकता है।
हाँ।
जिसे हम खुद अनुभव कर सकते हैं, जी सकते हैं। योगानंद जी की पूरी कहानी यही दिखाती है।
और मेरे लिए सबसे असरदार बात यह है कि ये ब्रह्मांड और हमारी अपनी चेतना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल, ज्यादा रहस्यमयी और ज्यादा शक्तिशाली है। ये किताब हमें हमारी सीमाओं से परे देखने के लिए उकसाती है, अपनी असली क्षमता को पहचानने के लिए। ये वाकई पूर्व और पश्चिम, विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक अद्भुत पुल है।
ये ईश्वर को किसी भारी जज की तरह देखने के बजाय उसे अपनी ही चेतना के आनंदमय सार के रूप में अनुभव करने का न्योता देती है।
संक्षेप में कहें तो योगी की आत्मकथा सिर्फ एक रोमांचक जीवन कहानी नहीं है, ये एक कालातीत आध्यात्मिक गाइड है जो हर किसी को अपने भीतर की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रित फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।